मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान जो विद्यादि सागर सुधी विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं तैसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पान बोले भगवान महावीर स्वामी की आचार्य कुंद कुंद स्वामी की आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज
की परम पूज्य मुन्ना श्री क्षमा सागर जी महाराज की परम पूज्य मुन्ना श्री भव्य सागर जी महाराज की मुनि संघ की।
हम पिछले कई दिनों से तीर्थंकर प्रकृति कैसे बंधती है इस बारे में विचार कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति बहुत विरले जीवों को ही अर्जित होती है और 16 कारण भावनाओं के भाने से और वो भी किसी केवली शुद्ध केवली के बाद मूल में उतनी विशुद्धि के साथ हम उसको अर्जित कर पाते हैं। ठीक है, आज हमारे पास वो सारी चीजें नहीं है, केवली शुद्ध केवली का पाद मूल नहीं है, पर हमारे पास 16 कारण भावनाओं को भाने के लिए अवसर तो अवश्य है। इसलिए हम अब रोज रोज एक एक भावना को समझ करके अपने जीवन में कोशिश कर रहे हैं कि वो भावनाएं हमारे जीवन में बनी रहें। आज बह्य वृत्ति ये भी एक 16 कारण भावनाओं में शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्त करण। वैयावृत्ति भी वैसे तो अंतरंग तप है वैयावृत्ति, पर 16 कारण भावनाओं में भी उसको रखा है। तो 16 कारण भावनाओं में वैयावृत्ति को रखा तो उसका क्या मायने निकलेगा, और वहां जो समंतपद्र स्वामी शिक्षा व्रत में वैयावृत्ति कर रहे हैं वहां क्या अर्थ है, क्या कोई अंतर है, इस पे थोड़ा सा अपन विचार कर लें। कोई शिक्षा व्रत में वैयावृत्ति का पालन कर रहा उससे तो तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा तो लिखा नहीं। कोई वैयावृत्ति नाम का तप कर रहा है उससे तीर्थंकर प्रकृति बंधे ऐसा भी नहीं लिखा। तो फिर वैयावृत्तकरण नाम की जो 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है उसको किस तरह बहाया जाता होगा जिससे कि हमको तीर्थंकर प्रकृति बन जाए। व्यापत्ति व्यपनोदा पदयो संवाहनम च गुणरागात वैयावृत्यम शिक्षा व्रतानी चत्वारी शिष्टानी। एक श्रावक अपने जीवन में कैसे वैयावृत्ति करता है तो व्यापत्ति व्यपनोदा पदयो संवाहनम, क्यों, गुण रागात, जो गुणवान हैं उनके गुणों के प्रति अनुराग होने से उन पर आने वाली किसी भी विपत्ति को हम झट से दूर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, वे थक गए हैं तो हम उनके पैर दबाने तैयार हो जाते हैं। उनको अगर आहार चर्या के लिए निकले हैं, शुदा वेदना को दूर करने का उपाय करना है, तो हम उसमें निमित्त बनते हैं और उनके लिए आहार दान इत्यादि देते हैं। वे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं तो हम उनके लिए जो है शास्त्र दे करके और उनके उस अध्ययन में उनकी मदद करते हैं। वे सामायिक में लीन हैं तो हम हल्ला गुल्ला नहीं बचाते, हम शांत रहते हैं। ऐसे शांत रह करके हम उनकी भैया वृत्ति कर लेते हैं। वे अपने काम में लगे हैं तो हम जाकर के जो है जबरदस्ती की नमोस्तु महाराज ऐसा नहीं कहते, चुपचाप कह के बैठ जाते हैं कि महाराज अपने लेखन में लगे हैं तो लिखो, ये हम उनकी भैया वृत्ति कर लेते हैं। इस तरह से हम श्रावक और ऐसी भैया वृत्ति अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन उद्देश्य क्या है? वहां पर हमारा उनके प्रति गुणानुराग है और हम उनसे चाहते क्या हैं, उनसे भी हम उनके जैसे ही गुण अपने भीतर लाना चाहते हैं, तब कहलाएगी भैया वृत्ति। पिताजी के भी बेटा पैर दबाता है और मुनि महाराज जी के भी श्रावक लोग पैर दबाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? एक में संसार बढ़ाना है और दूसरे में संसार घटाना है। एक में पिता की संपत्ति मुझे मिलेगी उनकी सेवा करने से और एक में संपत्ति मिलेगी काहे की, रत्नत्रय की संपत्ति, क्योंकि मैं रत्नत्रयधारी के पैर दबा रहा हूं। बस इतना ही फर्क है, श्रावक इतना कर लेता है लेकिन इतने अकेले से तीर्थंकर प्रकृति नहीं बनेगी। तो थोड़े आगे बढ़ते हैं कि फिर भैया वृत्ति नाम का एक तप है जिसमें कि आचार्य उपाध्याय तपसी साधु समाधिर भैया वृत्तकरण नहीं, वो सूत्र जी का एकदम भूल रहा हूँ, आचार्य उपाध्याय साधु कुल संग ये सब नौ प्रकार की भेद से भैया वृत्ति के भी नौ भेद हो जाते। इन सब पर आने वाली विपत्ति को दूर करना, उन सब से उनको भाव क्या है, उन पर पहले नंबर तो कोई विपत्ति आए ही नहीं और अगर आ जावे तो मैं उसमें दूर करने में निमित्त बनूं, और इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ें फिर अपन इसको आसान कर लेंगे। पहले थोड़ा सा जैसा आचार्यों ने कहा है उसको जरा समझ लें अपन, फिर एक परिभाषा जो बनाई कि गुणवत् दुख उपनिपाते, जो गुणवान है उनके ऊपर कोई दुख आ गया है, वैसे किसी भी स्थिति में नहीं, दुख उपनिपाते निर्वध्येन विधिना निर्दोष विधि के द्वारा तद अपहरणम भैया वृत्य करणम। ये भैया वृत्त नाम की 16 कारण भावनाओं में से एक भावना है, जिसके साथ में शिक्षा व्रत वाले भैया व्रत भी जुड़ा है, जिसके साथ में भैया व्रत जो अंतरंग तप है वो भी जुड़ा हुआ है, लेकिन विशेष रूप से क्या जुड़ा हुआ है, गुणवत् पहली चीज, उन पर आने वाले किसी भी दुख के समय पर निर्बद्ध रूप से, ऐसे नहीं किसी भी रूप से नहीं, निर्बद्ध निर्दोष रूप से उनके दुखों को दूर करने पर्यंत वैसी भावना भाना, कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन भावना भा रहे हैं, निरंतर भावना भा रहे हैं कि जो भी रत्नत्रय को धारण करने वाले या कि रत्नत्रय को धारण करने के मार्ग पर चलने वाले, उनकी सेवा करने वाले सब त्यागी व्रति जितने भी हैं, उन सब पर अगर कोई विपत्ति आई नहीं है अभी, उन पर कोई विपत्ति कभी एक तो आए नहीं, आए तो मैं निर्दोष विधि से उसे दूर करूं, ऐसी निरंतर भावना भाना, ये ऐसी भावना भाने में कुछ लग रहा है क्या? कुछ भी नहीं लगता, लेकिन हमारे अंदर ऐसी निरंतर भावना बनी रहे और ध्यान रहे कि किस लिए, तो परमार्थ के लिए, मैं अपने किसी सांसारिक स्वार्थ के लिए नहीं, मैं अपने परमार्थ के लिए। अपन लोग सेवा करते हैं, जरा विचार करना, असल में इसलिए मैं इशारा कर रहा हूँ इस तरफ। अपन सेवा करते, चलो महाराज के पांव दबाए आवे, महाराज देख ले हैं तो भयाने चौका लग रहा हो, सो जल्दी आ जाए। घर में भी कहते हैं कि अब तुम इतने दिन हो गए जाते नहीं है महाराज की लगा, जाओ भी तो नजदीक है, तुम पांव वाव दबाओ तब तो अपने तरफ आए भी, ऐसे कैसे आए। तो वहां पर अपन पैर दबा रहे लेकिन अपने मन में भाव क्या। अपन सारी चीजें करते हैं लेकिन उसके पीछे जो हमारी भावना छिपी हुई रहती है, वो भावना हमारे उस कार्य को कमी वेशी ला देती है उस कार्य में। तो हम अपनी उस भावना को पहले देखें कि एक तो उन पर कभी विपत्ति आए नहीं, गुणवान हैं वे, और उन पर विपत्ति आ जाए तो मैं निर्दोष विधि के द्वारा, महाराज जी आप तो ले लो, आप तो वो आपको बार बार जरूरत तो पड़ती है, एक पीजर रख देते हम या एक सेलुलर रख लेते फोन, आप हमसे जब भी बात करना हो बड़े आसान, आप तो बहुत आ गए हैं वैसे वाले, एक रख लो। ये भैया वृत्ति न कहलाएगी भैया, इसलिए निर्दोष विधि ना लिखना पड़ा। उनके रत्नत्रय की आराधना में सहयोगी जो चीजें हैं वे चीजें ही उन्हें उपलब्ध कराई जाएंगी, वैसी ही उनकी सेवा की जाएगी, ये भैया वृत्ति कहलाएगी। एक व्यक्ति रात में बढ़िया से पैर दबाने लगे, यहां की बात नहीं, नैनागिर की बात है, सन 82 की बात है। तो हमने थोड़ी देर के बाद और बंद करके और अपने माला फिरने लगे, वो कहने लगे कि महाराज आपने तो हमसे थोड़ी सी करवाई और करवाना थी आपको। हमने कहा भैया उतने से हमारा काम चल गया, उतने ही पर्याप्त है, और हमेशा ध्यान रखो कि आपने जो पैर दबाए हैं सो उन पैर दबाने से उद्देश्य क्या है कि हम दो माला ज्यादा फिर सकें, जाने के आराम से सो जावें, तो आपकी भैया वृत्ति खोटी। अगर आपकी सेवा से मेरे अंदर और तपस्या करने का भाव जागृत हो जाए, तपस्या मेरी बढ़ जाए, तो वो सेवा ठीक। आपके द्वारा हाथ पर रखे गए ग्रास से अगर हमारे राग द्वेष में कमी आवे, हमारी तपस्या ठीक हो सके, तो वे दो ग्रास सही हैं, और भी रसगुल्ला दो धर दे बे जोन भीतरे दिन भर पचावे ही में पूरो एनर्जी लग गई। अब वे का करें हम, उतरे कछु स्वाध्याय कर पे कि नहीं कर। हम ये नहीं कह रहे कि रसगुल्ले ही नहीं, तो ऐसा नहीं तो आप समझो कि महाराज जी को बार बार रसगुल्ले की ख्याल आ जाते। कहने का आशय ये है कि निर्बद्ध क्यों लिखना पड़ा, इसलिए लिखना पड़ा कि भैया ऐसी सेवा करें जिससे कि उनकी रत्नत्रय में वृद्धि हो, और किस भावना से करें, मेरे भी रत्नत्रय की प्राप्ति हो। अनुकूल प्रवृत्ति करना ही भैया वृत्ति है, ऐसा भी राजवार्तिक में आचार्य महाराज लिखते हैं। अनुकूल प्रवृत्ति करना, तो हम सोच में पड़ गए कि अनुकूल प्रवृत्ति करना, तो हमें तो ये लग रहा है कि शाम को अगर और अच्छे से भोजन कर लेती तो अच्छो रहे, तो आप हमारी मदद करेंगे उसमें क्या, क्यों हमें तो ऐसा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा नहीं है, अनुकूल प्रवृत्ति मतलब धर्मानुकूल प्रवृत्ति करने में, हमने तो यही उसका अर्थ, महाराज के अनुकूल वातावरण निर्मित करना मतलब उनके धर्म ध्यान के अनुकूल, उनके संसार बढ़ाने के अनुकूल नहीं, उनके मन के अनुकूल नहीं, उनके धर्म ध्यान के अनुकूल, धर्म सम्मत जिसको अपन कहते हैं, वो अनुकूलता वहां पर उपस्थित, उनके स्वाध्याय में दिक्कत ना हो, उनके पूजा इत्यादि लेखन कार्य में दिक्कत ना हो, इन सब के लिए उन वे अपना धर्म ध्यान अच्छे से कर सके, ऐसी अनुकूलता बनाना ये है। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपन चाहे जिस तरह अपने अपने हिसाब से करना चाहें, रत्नत्रय की प्राप्ति स्वयं भी हो। अपन कहते ना कि अनुकूल प्रवृत्ति करो, अपने पिताजी के अनुकूल चलो, मतलब पिताजी की जो अच्छाइयां हैं उनको अपने जीवन में लाओ, वही तो अनुकूल चलना है। अपने गुरुजनों के अनुकूल प्रवृत्ति करो, इसका मतलब क्या है कि वे जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो मार्ग स्वयं अंगीकार करो, तब अनुकूल प्रवृत्ति कहलाएगी। इस तरह हम देखें तो भैया वृत्ति है तो एक तरह की सेवा शुश्रूषा और उपकार, लेकिन देखो इस बैयावृत्ति, बैयावृत नाम रखा है, सेवा भी कह सकते थे, लेकिन सेवा शब्द छोटा है। सेवा तो गो सेवा भी की जाती, जन सेवा की जाती, देश सेवा की जाती, कितनी प्रकार की सेवा है, लेकिन ये रत्नत्रय की सेवा का नाम बैयावृत्ति है। और काहे के लिए, कौन सी भावना से, कि मेरे भी ऐसे ही रत्नत्रय की प्राप्ति हो। देखें तो जरा जाके उनके पास, हमारे जैसे खाते पीते चलते फिरते नजर आते, बोलते बात करते नजर आते हैं हमारे जैसे ही, पर समथिंग इज एक्स्ट्रा। वो अतिरिक्त क्या है इनके पास, इनके चरणों में जरा जाकर बैठ के देखें कि ये सुख दुख आने पर समता रखते हैं, नहीं रख पाते हैं तो जल्दी से अपने को संभाल लेते हैं। अरे हम ऐसा नहीं कर पाते, ये 48 मिनट में अपने सुख दुख में समानता धारण कर लेते, हम तो दो दो चार चार दिन तक, सुख आता तो फूले नहीं समाते, दुख आता तो रोते नहीं, चुप हो पाते। और ये बात इनके पास कुछ अलग है हमसे, ऐसा ऐसा उनसे हम शिक्षा लेने के लिए बैयावृत्ति कर रहे हैं, अपना कोई स्वार्थ साधने के लिए कि हमें लोग मानेंगे कि वाह इनकी। कई लोग तो यही सोचते हैं कि चलो महाराज के पास बैठें, फिर बाहर ऐसे निकलते कि देखा इतनी अप्रोच है, एक घंटा बात करके आए हैं, कहा समझ रहे तुम, तो जा तक नहीं पा रहे। ऐसी भावना से नहीं, हमारी अच्छी पहुंच है महाराज तक, ये बैयावृत्ति, ये बैयावृत्ति नहीं कहलाएगी भैया। हम उनके कर चरणों में, हमें याद है कि ऐसा होता है, बहुत संख्यासी की बात है, 4 महीने तक एक व्यक्ति, और वो सेवा कैसी करते थे, ये भी एक सेवा है, तत्व चर्चा करते थे। तत्व चर्चा करना भी मेरी सेवा है, ये ध्यान रखना। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें पूछते थे, मेरा भी ज्ञान बढ़ता था, तो रोज का था, लेकिन बाकी लोग उनसे चिढ़ते थे। इनको महाराज जी घंटे भर देते हैं, इनसे चर्चा करते रहते हैं। एक दिन एक व्यक्ति ने व्यंग में उनसे पूछ लिया, क्यों भाई क्या पाया, 4 महीने हो गए, खूब आप तो खूब चर्चा करते, क्या पाया आपने। कह ले कुछ नहीं, यहां मैं पाने आता ही नहीं था। अरे तो क्या करने आते थे यहां पर। बोले यहां तो मैं खोने आता था, पाने तो आता ही नहीं था, जो पाना है वो तो मेरे पास पहले से है, मैं तो अपनी विषय कषाय राग द्वेष सब यहाँ पर खोने छोड़ने के लिए आता हूँ, पाने वाने के लिए वो तो महाराज के पास बैठ के समझ में आ गया कि जो पाना है वो मेरे भीतर पहले से विद्यमान है। जैसी चर्चा अभी अपन पंडित जी से सुन रहे थे कि वो सब चीजें हमारे भीतर हैं, हमारी अपनी खोटी बुद्धि, हमारे अपने खोटे कर्मों से हम ऐसे हो गए हैं, हमारा स्वभाव खोटा नहीं है। तो इतना बढ़िया जवाब उन्होंने दिया कि हम यहां चरणों में कुछ पाने नहीं आते, हम तो अपने विषय कषाय खोने आते, और हमने तो देखा है कि सेवा करने वाला अपने विषय कषाय को कमती न करके बड़ा और लेता है। तो भैया जे सेवा ने कहलाएगी, हम अगर हम देव गुरु शास्त्र की सेवा कर रहे हैं, शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति करना, मतलब अपना आचरण शास्त्र में कहे अनुसार बनाना, गुरु के अनुकूल प्रवृत्ति करना, गुरु के आचरण में जो जो अच्छी बातें हैं उनका अनुसरण करना, भगवान के अनुकूल प्रवृत्ति करना, मतलब उन्होंने जैसे 18 दोषों से रहत अपने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त किया है वैसी लगन अपने भीतर होना। मैं तो सोचता हूं कि शायद सच्चे देवगुरु शास्त्र के अनुकूल प्रवृत्ति करके और हम अपनी भावनाओं को निर्मल बनाते हैं, वही हमारे तीर्थंकर प्रकृति के बंध में निमित्त बनेंगी। दो ही चीजें सब भूल जावे तो दो ही चीजें याद रखना भैया, कि आप गुणों के अनुरागवश हम सेवा कर रहे और हमें भी वैसे गुण प्राप्त करना, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। ऐसी अगर हमारे अंदर भावना हो तो यह बैयावृत करने की जो भावना है वो भी हमारे अंदर कर कछु नहीं पाए हो सकता, लेकिन भावना तो हमारे अंदर प्रबल है कि हम ऐसा करें। एक जज का उदाहरण आता है कि वो चले जा रहे थे अपनी कार में बैठ करके, कोर्ट जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने एक कुत्ते को कीचड़ में फंसे देखा, रहा नहीं गया उनसे। आचार्य महाराज ये उदाहरण सुनाते हैं, वो यही कहते हैं कि भैया सेवा करके हम दूसरे का दुख दूर नहीं करता, अपने दुख दूर करने का उपाय कर रहे, दूसरे को दुख दूर होवे न होवे वह उसके ऊपर निर्भर करता है। वो ऐसी व्याख्या करते आचार्य श्री, हम अपने दुख की वेदना कम करने के लिए दूसरे के दुख को दूर करने में निमित्त बनते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने से वास्तव में हमारे दुखों से बचने का उपाय हम पा लेते हैं। भैया वृत्ति ऐसी चीज है। तो वो जा करके कार में से उतरते हैं, बढ़िया तो कपड़े पहने थे, काला कोटो, बाकी तो सफेद ड्रेस रहती है, नहीं रहती इन लोगों की, वकील और जजेस वगैरह की, तो वो सफेद कपड़े। अब फिर भी जो है सारे लोग तो जो है ऐसे देख रहे हैं, पर उन्होंने क्योंकि वो दुखी, उसको दुखी देख करके उनका दुख बढ़ गया था। सो अपने दुख को कमती करने के लिए जब तक उसको सुख नहीं पहुंचा दूंगा तब तक मुझे सुख नहीं होगा, ऐसी भावना, ये है पवित्र भावना। प्राणी मात्र का दुख जब हमें अपना दुख लगने लगा, सो हम अपनों दुख कमती करवे के लाने प्राणी मात्र को दुख से बचाने का उपाय खोजने लगे, तो हम कहते कि कैसे नहीं बंधेगी तीर्थंकर प्रकृति, भैया अवश्य बंधेगी थी। ऐसे जीवों के लिए तो बंधती है जो प्राणी मात्र के दुख को दूर करने, उन्हें कल्याण का मार्ग बताने की भावना भाते हैं, तब फिर उनके लिए वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है। अब उनने जो है निकाला उसको बाहर, निकाला तो जैसे ही अब उसकी तो आदत रहती है, वो छप गया था पूरा, तो उसने एक बार अपने शरीर को ऐसा झटका, सो जैसे ही झटका सो सब कींचा नीचा इनके ऊपर वो चट गया। लेकिन इसके बाद भी उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी और मन तो बहुत प्रफुल्लित था। अपनी गाड़ी में बैठ करके कोर्ट में पहुंचे तो सब लोग उनके इस रूप को देख करके और हंसने लगे, अरे क्या, कई लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा, सब चकित हुए। लेकिन अब कोई कुछ इसलिए नहीं कह पा रहा था कि ऐसे कपड़ा खराब हो जाए और कौनों को मुंह बनो हुए तो पूछे कि का भी यका होगा जो कैसे मच गए, कह दुखी दिखाई पड़े तो अपना मन होता पूछने का, अब जी तो इतने प्रसन्न और इतने प्रफुल्लित, अब इनसे क्या पूछें, खराब कपड़ा हो गए सब। फिर भी किसी ने पूछ लिया कि क्या हुआ जज साहब, तो कहते कुछ नहीं, अपनी वेदना मिटाने के लिए जो मैंने किया उसका ये परिणाम है और कुछ नहीं, बाकी मुझे तो मेरी वेदना शांत हो गई, मुझे तो बड़ा हर्ष है, अपार शांति है। उस कुत्ते के दुख को दूर करके, उसे कीचड़ से निकाल करके, भैया और कछु नहीं कहने, हमें मोह के कीचड़ में अपन सब जने फंसे, सो उस मोह के कीचड़ में से जो निकाल देवे हमें और उसमें प्रसन्नता महसूस करे उसकी सेवा करना और स्वयं को भी मोह के कीचड़ से निकालने की प्रक्रिया अंगीकार करना सबसे बड़ी सेवा है। जो निकलने की कोशिश में है उनकी सेवा करना और खुद भी फंसे सो अपने लिए निकालने के लिए प्रयत्न करना और उसमें ही आनंद मानना, वास्तव में यही सेवा है। अपन लोग जो है इस तरह की सेवा भावना, इस तरह की भैयावृत्ति की भावना अपन सबके भीतर भी आवे, इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यज्ञ नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग दर्शन करने वाला है, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक बोता हो, तव शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो, करते तब शैल नदी तट पर तरुकल वर्षा की झड़ियों में समतार रस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। बंधन तड़ तड़ टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां।